हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रिदांश ने अपने ड्राइवर और गार्ड्स के साथ प्रिशा और नम्या को घर के लिए भेज दिया। उनके जाने के बाद उसने कई बार आरना को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। इधर उधर दुकानों पर देखने के बाद भी जब उसे आरना कहीं नज़र नहीं आई तो कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन उसके चेहरे पर आज पहली बार आरना को लेकर परेशानी के भाव उभर आए। दूसरी तरफ कुछ देर बाद आरना को होश आया और वो अपने चारों तरफ के माहौल को देखकर घबरा गई। इस वक्त वो एक स्टोर रूम जैसे शीशे के गेट वाले कमरे के फर्श पर बैठी थी। कमरे में कबाड़ा और फालतू सामान पड़ा था और वो धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि काफी वक्त से यहाँ कोई आया ही नहीं था। ये जगह मॉल के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग के कोने में मौजूद थी, जहाँ बहुत कम ही कोई आता जाता था। आरना के दोनों हाथ उसके ही दुपट्टे से पीछे की तरफ बंधे थे और उसका चोट थाया पैर भी दर्द कर रहा था। ये सब देखकर आरना बहुत बुरी तरह घबरा गई। तभी वो नकाबपोष शख्स ठीक आरना के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया।
चा, इतनी नाजुक सी कली और ऐसे जमीन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने मजबूर किया मुझे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने के लिए।
आरना कुछ पल तक इस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे ही कुछ पल बाद वो इस आवाज़ को पहचानती है तो शॉक्ड हो जाती है। आरना शॉक्ड होकर, करण तुम? करण अपना नकाब हटाकर इम्प्रेसिव लहजे में,
वाओ इम्प्रेसिव भाभी जी, आप तो जितनी खूबसूरत हो उतनी ही इंटेलिजेंट भी, मतलब यूं पहचान लिया मुझे।
गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? अपने हाथ झटकते हुए, मेरे हाथ खोलो अभी और मुझे जाने दो यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।
करण, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, पर आज बल भी जलेंगे और रस्सी भी।
आरना झुंझलाकर, खोलो मुझे वरना तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। करण आरना के पास आकर,
नो बेबी नो, आज कोई धमकी और कोई डर मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकता। एक पल बाद कसकर उसके जबड़ों को पकड़ते हुए, कहा था ना, कहा था कि प्यार से मेरी बात मान लो, किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सती सावित्री बनने का भूत चढ़ा था। असल में तो तुमने ही मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए, वरना अगर तुम पहले ही मेरी ऑफर मान लेती तो फालतू में हम दोनों को ही इतना नहीं सहना पड़ता। अजीब नजरों से आरना को देखते हुए, खैर मेरी मेहनत तो आज वसूल हो जाएगी। देखो, जो मुझे करना है वो तो करना ही है, चाहे मर्जी से या फिर जबरदस्ती से। इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अच्छे से मेरे साथ कॉपरेट करो, लालची नजरों से। बस समझो, आज उस रिदांश की जगह मैं हूँ और तुम्हें मुझे खुश करना है, और आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा।
करण की घटिया बातें सुनकर आरना गुस्से से उसके मुंह पर थूक देती है। ये देखकर करण गुस्से से तिलमिला उठता है और झुंझलाकर आरना के गाल पर एक जोरदार चांटा रसीद कर देता है। आरना दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। करण रुमाल निकालकर अपना मुंह साफ करता है। एक पल को उसका ध्यान भटकता देखकर आरना मौका पाकर पूरी ताकत से अपने सर के सहारे उसे पीछे की तरफ धक्का देती है। करण पीछे की तरफ गिर जाता है। आरना फुर्ती से वहाँ से भागने के लिए उठती है, लेकिन अपने पैर की चोट की वजह से वो चाहकर भी नहीं भाग पा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद अचानक ही जल्दबाजी की वजह से उसका पैर मुड़ जाता है और वो लड़खड़ाकर जोर से पीठ के बल जमीन पर गिर जाती है। अचानक गिरने की वजह से वहीं पड़ा एक कांच का टुकड़ा उसके बंधे हुए हाथ की हथेली में घुस जाता है और आरना की दर्द भरी आह निकल जाती है। लेकिन इस वक्त वो अपने इस दर्द से ज्यादा करण के इरादों से घबराई हुई थी, इसीलिए वो वापस से उठने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से उठ पाती, करण उसके करीब पहुँच जाता है और उसे उठने की कोशिश करता देख बड़ी ही बेरहमी से उसके पहले से जख्मी पैर को अपने जूते से बुरी तरह मसल देता है। वो दर्द आरना के लिए इतना असहनीय था कि उसने अपनी हथेली में लगे कांच के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था और उसके आंसुओं के साथ ही दिल को चीरने वाली चीख निकल जाती है। ये देखकर करण जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है। दूसरी तरफ रिदांश के आने की खबर से मॉल का ओनर भी वहां आ चुका था और आरना को ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। जब कुछ देर तक भी आरना कहीं नहीं मिली तो रिदांश वहां के स्टाफ से सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है, जिसमें वे लोग आरना को मॉल में एंट्री करते लिफ्ट में जाते देखते हैं और उसके साथ ही एक नकाबपोश को भी। इसके बाद दोनों ही लिफ्ट से बाहर निकलते नजर नहीं आए और न ही कहीं भी किसी भी एग्जिट गेट पर।
टॉम, इसका मतलब है बॉस मैम अभी भी यहीं कहीं अंदर ही हैं, क्योंकि वो अभी तक बाहर जाती तो नजर ही नहीं आई।
रिदांश, मुझे अंडरग्राउंड वाले फ्लोर की फुटेज दिखाओ।
स्टाफ, सॉरी सर, वो आज दोपहर से ही खराब है, पता नहीं अचानक वहाँ क्या हो गया, वो कैमरा ऑफ है, हमने अपनी टेक्निकल टीम को बोला है, वो आते ही होंगे।
रिदांश कुछ सोचते हुए सख्त भाव से,
एडियट, और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो?
ओनर, क्या हुआ है सर? रिदांश, वो कैमरा खराब नहीं हुआ है, किया गया है, जिसका साफ मतलब है कि किसी को पहले से ही मालूम था कि मेरी वाइफ यहाँ आने वाली है और ये सब एक प्लान के थ्रू किया गया है।
टॉम, फिर तो हमें जल्द से जल्द नीचे जाना चाहिए।
रिदांश अपने लोगों और मॉल के ओनर और कुछ स्टाफ के साथ नीचे की तरफ जाता है। इधर करण आरना के मुंह पर पट्टी बांध देता है।
करण, आरना के बाद पकड़कर, सोचा तो था कि तेरे साथ प्यार से पेश आऊंगा, लेकिन तूने मुझे गुस्सा दिलाकर अपना ही नुकसान किया है, और अब मैं तुझे बताता हूँ कि करण कितनी कमीनी चीज है।
इतना कहकर करण आरना के साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करने लगता है। आरना खुद को उस राक्षस से बचाने की लाख नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक ही करण को वहाँ कुछ कदमों की आहट की आवाज़ आती है जो उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। ये महसूस करते ही करण आरना से वापस आने का वादा करके जल्दी से वहाँ से पीछे के दरवाजे से भाग खड़ा होता है। आरना खुद में सिमटते हुए दीवार से टिककर बुरी तरह सुबकने लगती है। तभी ऐन मौके पर रिदांश और उसके लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर आते हैं। पीछे का दरवाजा खुला देखकर रिदांश के लोग उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। रिदांश एक पल को आरना के मुंह और हाथ बंधे और बेतरतीब कपड़े और हालत देखकर शॉक्ड और फ्रीज हो जाता है। टॉम बाकी लोगों को बाहर रुकने का ही इशारा करता है और अगले ही पल रिदांश जैसे होश में आता है और आरना की तरफ बढ़कर जल्दी से उसके मुंह की पट्टी हटाता है। जैसे ही वो आरना के चेहरे को छूने की कोशिश करता है तो आरना शॉक से डरते हुए अपनी आंखें कसकर बंद करके रोते हुए उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, रिदांश, आरना, मैं हूँ रिदांश। आरना डरते हुए शॉक्ड होकर, नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे। रिदांश आरना के कांधे झकझोरते हुए, होश में आओ, मैं हूँ रिदांश। आरना अपनी आंसुओं भरी आंखों से रिदांश की तरफ देखती है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में डर और सदमा साफ नजर आ रहा था और इस वक्त वो बहुत ही सहमी सी नजर आ रही थी। रिदांश आरना को ऐसी हालत में देखकर उसके करीब जाता है और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए अगले ही पल उसका ध्यान इस तरफ से भटकाने के लिए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। कुछ पल बाद जब उसे आरना की बॉडी पहले से थोड़ा रिलैक्स फील होती है तो वो उससे अलग होता है। रिदांश आरना के माथे से अपना माथा टिकाकर आरना के हाथ खोलते हुए, मैं हूँ रिदांश।
आरना जब रिदांश की करीबी से थोड़ा रिलैक्स होती है और महसूस करती है कि उसके सामने सच में ही रिदांश है, तो वो अगले ही पल सब भूलकर अपनी दोनों बाजू रिदांश के गले में डालते हुए उसके सीने से लग जाती है और जोर से सुभकने लगती है। एक पल बाद ही रिदांश भी अपनी बाजुओं को आरना के इर्द गिर्द लपेटते हुए उसे सांत्वना देते हुए एक हाथ से उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। आरना भी एक छोटे बच्चे की तरह रिदांश के सीने से लगकर सुबक रही थी और इस वक्त रिदांश की बाहें उसके लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह लग रही थीं। दूसरी तरफ आज पहली बार रिदांश की आंखों और चेहरे पर आरना को लेकर जज्बात नजर आ रहे थे। जब रिदांश की नज़रें आरना की फटी बाजुओं और गर्दन पर ताज़ा नाखूनों की निशान पर पड़ती हैं तो उसका चेहरा गुस्से से तिलमिला उठता है और वो आरना को यूं ही सीने से लगाए हुए अपना कोट उतारते हुए उसको पहना देता है। आज रिदांश की आंखों में अलग ही जज्बात और इमोशंस उमड़ रहे थे जो आज से पहले कभी नजर नहीं आए थे और अनायास ही उसके होंठ आरना के सर पर ठहरते हुए उसके सर को चूम लेते हैं। आरना, सुबह कर रोते हुए, उसने मुझे बहुत ही गंदे तरीके से छुआ। रिदांश डेंजर भाव से, आई प्रॉमिस, जिसने भी तुम्हारे साथ ये नीच हरकत करने की कोशिश की है उसे अब जिंदगी भर के लिए अपने पैदा होने पर अफसोस रहेगा।